आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th के साइंस का 8th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी चैप्टर का एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही इंडिविजुअल नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर नए जनरेशन का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए दो इंडिविजुअल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स से रिक्वायरमेंट है दो गेमीट्स की। मेल इंडिविजुअल्स जो होंगे वो मेल गेमीट्स बनाएंगे, फीमेल इंडिविजुअल्स जो होंगी वो फीमेल गेमीट्स बनाएंगी। ये दोनों गेमीट्स कॉन्टैक्ट में आएंगे, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो जाइगोट बाद में जाके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको फेवरेबल क्यों माना जाता है। देखो, इवोल्यूशन जो होता है वो नई चीज का इवोल्यूशन इसलिए होता जाता है क्योंकि प्रकृति समझती है कि वो ज्यादा फेवरेबल है। तो प्रकृति ने ये समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा फेवरेबल है, तो उसके कारण हमने देखे थे कि हमने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नया जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहां पर नए जनरेशन के फॉर्मेशन के वक्त डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होता है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है जो नए जनरेशन के इंडिविजुअल में ट्रांसफर की जाती है। अब ये जो नया डीएनए का कॉपी बनाया जाता है, इसके अंदर जब कॉपी बनती है तो कॉपी बनने का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से थोड़ी बहुत वेरिएशन उस डीएनए के नए वाले कॉपी में हो जाती है। और ये थोड़ी बहुत वेरिएशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो थोड़ा बहुत हल्का बहुत भी डिफरेंट हो अपने पेरेंट से, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हल्का बहुत भी डिफरेंट होने की वजह से ही ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ग्रुप के अंदर। एक स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बन जाते हैं जिनकी जो होस्टाइल इन्वायरमेंट है, जो ऐसा इन्वायरमेंट है कि ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन हमें दिख जाती है ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की क्षमता में। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जिनके अंदर वेरिएशंस हो, तो ऐसे में हम क्या चाहेंगे कि वेरिएशन होने की प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाए। तो इसको स्पीड अप करने का तरीका ये बहुत अच्छा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक इंडिविजुअल जो होगा वो किसी अलग जनरेशन से आया होगा, दूसरा इंडिविजुअल जो होगा वो किसी अलग जनरेशन से आया होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो पहले अलग जनरेशन से आया है उसके जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती जा रही होंगी जब उस इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली दूसरे वाले इंडिविजुअल में भी ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस होंगी। जब ये दो इंडिविजुअल संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि गेमीट्स के फ्यूजन होने के वक्त दोनों इंडिविजुअल्स की वेरिएशन मिक्स होके ज्यादा वेरिएशन बनाते हैं, तो नया जनरेशन जो बनता है उसमें ज्यादा वेरिएशन होता है और ये फायदेमंद है। तो इसीलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है इसको एक फेवरेबल मोड माना जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो गेमीट्स होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो गेमीट्स होते हैं उनके मेल गेमीट और फीमेल गेमीट हो सकता है कि देखने में बिल्कुल सिमिलर हो, थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, तो इनमें क्या होता है कि जैसे हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बाकी शेर है, ऐसे इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि जितने कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स इनके सेक्सुअल गेमीट्स भी होंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो गेमीट्स होते हैं वो फीमेल के अंदर ऐसे होते हैं कि वो बहुत स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं साइज में। तो गेमीट्स में से वो गेमीट जो स्टेबल रह रहा है, एक ही जगह पर रुक कर रह रहा है और वो बहुत बड़ा है साइज में इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का रिजर्व पड़ा हुआ है, वो बाद में जाके यूटिलाइज होता है जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट कराने के लिए। तो जो फीमेल गेमीट है वो स्टेबल होती है और मेल गेमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, उसका साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुँचना है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल, ये सारे पार्ट्स आप लोगों को एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलते हैं और इनमें से स्टेमन्स और पिस्टिल जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है वो स्टेमन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है वो है पिस्टिल। तो हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही साथ मौजूद हो, तो उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हिबिस्कस, जो आप लोग गुड़हल का फूल कहते हैं, हिबिस्कस उसे कहते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों का फूल। साथ में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों पार्ट्स एक साथ नहीं होंगे, तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स है पपाया एंड वाटरमेलन। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर लोब्यूलर लोब के जैसा आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो एंथर्स होते हैं। उसके नीचे जो दंडी वाला पार्ट है उसे फिलामेंट कहते हैं। सिमिलरली पिस्टल के अंदर आप देख रहे होंगे कि ऊपर कुशन जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टिग्मा को कैरी करता हुआ टच करके नीचे की ओर आता हुआ, उसे क्या कहते हैं, उसे स्टाइल कहते हैं। स्टाइल की जो एंड होती है बेसल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग होता है। तो बेसिकली जो फीमेल गेमीट है वो कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है। साथ के साथ आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे कि आप लोगों को पेज नंबर 135 पर एक डायग्राम दिया गया है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। सिमिलरली आपको एक डायग्राम पेज नंबर 134 पर भी दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, और यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर लिया। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे बाकी की बातें जो इस टॉपिक के अंदर रिक्वायर्ड है। तो देखो, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हो कि जो पिस्टल होता है उसका सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा कुशन लाइक होता है, कुशन यानी कि सॉफ्ट होता है, जिस पर आप कुशन पर बैठते हैं, तो उस तरीके का कुशन लाइक होता है। अब ये स्टिग्मा किस लिए रिक्वायर्ड है, कि स्टिग्मा इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो कि स्टेमेंस के एंथर वाले पार्ट में बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स होते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, क्योंकि ये मेल गेमीट्स हैं तो इसीलिए इनको ट्रैवल करके आना है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स हैं, तो बेसिकली पॉलन ग्रेन को किसी तरीके से ट्रैवल करके कहाँ पहुँचना है, स्टिग्मा तक पहुँचना है। लेकिन गड़बड़ ये है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं इनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि ये खुद ट्रैवल कर सकें, तो इसीलिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हवा पर या फिर पानी पर या फिर एनिमल्स पर ये निर्भर रहते हैं, ताकि इनको ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग का ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है ये या तो ऐसे हो सकता है कि एक ही फ्लावर जो है सेम ही फ्लावर है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उसी के अंदर स्टेमेंस भी हैं, उसी के अंदर पिस्टल भी है। तो अगर सेम फ्लावर के एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के पिस्टल पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर जो एंथर्स हैं वो एक फ्लावर के स्टेमन से, सॉरी, अगर पॉलन ग्रेन्स जो हैं एक फ्लावर के एंथर से निकल करके दूसरे किसी और फ्लावर के पिस्टल तक पहुंचते हैं, उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस पॉलिनेशन का नाम हम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन डिफरेंस बताइए करके पूछ सकते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर फ्लावर सेम रहता है, और फ्लावर सेम के अंदर ही सेम फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकल करके कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल के जो पिस्टल के स्टिग्मा वाला पार्ट होता है वहां तक पहुँचते हैं। तो एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैवल करना है, तो एंथर्स के अंदर से पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पहुंचे तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर ये एंथर्स से निकल करके पॉलन ग्रेन्स दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकल करके पिस्टल के स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंच गए। अब आगे क्या करना है, जैसे ही स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, उसके ऊपर लैंड करते हैं, तो स्टिग्मा थोड़ी सी स्टिकी होती है और वो पॉलन ग्रेन्स को अपने पर चिपका लेती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से चिपक चुके हैं, तो अब उनमें से एक ट्यूब ग्रो करने लगती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्यूब है, इसका नाम होता है पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन्स से डेवलप होती है और स्टिग्मा से होती हुई, स्टिग्मा को छेद करके उससे होती हुई, उसके अंदर पास करती हुई, फिर स्टाइल से पास करती है, और बेसिकली कहाँ तक पहुँचती है, पूरा ट्रैवल करके ओव्यूल तक पहुँचती है। ओव्यूल के अंदर क्योंकि एग है जिसे फीमेल गेमीट कह रहे हैं, तो फीमेल गेमीट तक, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गेमीट्स है उन्हें पहुँचना है, तो उनको पहुँचने के लिए रास्ता बनाने का काम पॉलन ट्यूब करती है। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे जो फिगर 8.8 आप लोगों को दिया गया है, फिगर 8.8 ऑन पेज नंबर 135, यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन से निकली हुई जो पॉलन ट्यूब है वो पूरा ट्रैवल करके कहाँ पहुंची है, ओवरी के अंदर जो फीमेल जर्म सेल यानी कि फीमेल गेमीट है वहां तक ये पॉलन ट्यूब पहुंच रही है, और इसी पॉलन ट्यूब से होती हुई जो मेल गेमीट्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं और पूरा कहाँ पहुंचती हैं, फीमेल गेमीट्स तक पहुंचती हैं। अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन से निकले हुए उन गेमीट्स का पहुंचना क्यों जरूरी है हमारे फीमेल गेमीट्स तक, क्योंकि जब तक ये पहुंचेंगे नहीं तो वहां पर फ्यूजन नहीं होगा। और आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि फीमेल गेमीट जो होती है उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्लांट, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के गेमीट्स हैं, तो इसीलिए इनकी जो फीमेल गेमीट होती है वो स्टैटिक होती है, रुकी हुई होती है, वो मूव नहीं कर सकती, लेकिन पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गेमीट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गेमीट्स हैं उन्हीं को ट्रैवल करना होगा और फीमेल गेमीट तक पहुंचना होगा ताकि फ्यूजन हो सके। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के साथ में जिस ओव्यूल के अंदर ये एग सेल मौजूद है वो ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, वो सीड का फॉर्मेशन करता है, और जो ओवरी वाली पार्ट है वो क्या बनाती है, वो फ्रूट बनाती है। तो आप लोगों ने कई सारे फ्रूट्स खाए होंगे, फ्रूट्स के अंदर आप लोगों को जो बीज देखने को मिलते हैं वो बेसिकली क्या है, वो ओव्यूल्स हैं जो सीड में डेवलप हो गए हैं आफ्टर फ्यूजन। फ्यूजन होने के साथ ही जो सीड्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और आपको हर एक सीड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हर एक सीड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उनके अंदर जाइगोट से बने हुए एम्ब्रियोज मौजूद हैं। अब ये जो सीड हैं क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियोज मौजूद हैं तो अगर आप इनको जमीन में बो देते हैं तो इनसे नया एक प्लांट ग्रो कर सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो एक मच्योर प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप सीड को बो दें और उसमें से एक नया प्लांट उग जाए उसे जर्मिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी के फ्लावर के पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल्स या फिर सेपल्स, ये सभी जो पार्ट्स हैं ये टूट के गिर जाते हैं, लेकिन किसी किसी फ्लावर से डेवलप हुआ जो फ्रूट है उसमें आप लोगों को फ्लावर के सेपल्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन वाला जो पत्ती जैसा होता है वो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रिंजल में आपने देखा होगा, बैंगन के अंदर आपने देखा होगा कि बैंगन जो होता है उसकी डंडी से लगे हुए सेपल्स मौजूद रहते हैं फ्रूट बनने के बाद भी, लेकिन बाकी सारे नॉर्मली जो फ्रूट्स होते हैं उनके सेपल्स पेटल्स ये सारे गिर जाते हैं जैसे ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी 8.7 करने को कहा गया है जो कि पेज नंबर 135 पर है। इसमें आपको क्या करना है, जो चने मिलते हैं उसको ले लेना है आपको, और चने को आपको सुखा पानी में भिगो देना है रात भर, सुबह आपको उसको निकाल लेना है पानी में से, और उसके बाद उसको गीले कपड़े पर रख देना है तो उसमें से अंकुरण निकल आएगा। तो अंकुरण जब निकल आएगा तो बहुत ध्यान से उसके ऊपर जो कोट होगा, जो ब्राउन कलर का छिलका होता है, जो ब्राउन कलर का छिलका आप लोगों को चने के ऊपर दिखता है वो बेसिकली उसका सीड कोट होता है। सीड्स जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनके ऊपर एक कोट चढ़ जाती है जिसे सीड कोट कहते हैं। ये इसलिए है ताकि प्रोटेक्शन मिल पाए एम्ब्रियो को जो सीड के अंदर है। तो आपका जो चना है जिसमें अंकुरण निकल आया है आपको बहुत ध्यान से उसकी सीड कोट निकालनी है, उसका जो छिलका है उसे रिमूव करना है, तोड़ना नहीं है आपको, ये ध्यान में रखना है। अगर टूट जाएगा तो आपको पार्ट्स ठीक से नजर नहीं आएंगे। तो आपको चना जो है वो अटैच्ड रखना है। आप देख पाएंगे कि चना जो होता है उसके अंदर दो कुछ लोब्स जैसे होते हैं, इन्हें कॉटिलीडन कहते हैं, और क्योंकि चने में दो ऐसे लोब्स होते हैं जिन्हें कॉटिलीडन कहते हैं तो इसीलिए चना एक डायकॉट पौधे से बना हुआ सीड है। तो चना एक डायकॉट है, और चने में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, जब आप इसको छिलका निकाल करके आप इससे हल्का सा खोलेंगे, तोड़ेंगे नहीं, पूरा अलग अलग नहीं कर देंगे, हल्का सा खोलेंगे, और खोलने के बाद आपको क्या दिखेगा, जो फिगर 8.9 में आपको दिख रहा है वही आप लोगों को दिखेगा जो पेज नंबर 135 पर है। इसमें आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे जैसे कि जो दो लोब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें कॉटिलीडन कहते हैं, इनके अंदर फूड रिजर्व रहता है जो यूज होता है जब जर्मिनेशन हो रहा होता है। और इन दो कॉटिलीडन्स को जोड़ता हुआ जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये बेसिकली एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो प्ल्यूमूल है वो बाद में जाके शूट का फॉर्मेशन करता है, जमीन के ऊपर वाला जो प्लांट का हिस्सा होता है पत्तियां ब्रांचेस ये सारा कहाँ से बनता है, प्ल्यूमूल से बनता है। तो प्ल्यूमूल ही ग्रो करके शूट का फॉर्मेशन करता है, और नीचे की साइड जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है वो रेडिकल होता है। रेडिकल जो होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप लोग चना ध्यान से खोल करके देखेंगे। और बेसिकली जितने भी डाइकॉट सीड्स हैं उसमें आप लोगों को यही इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ह्यूमन बीइंग्स में क्योंकि आपको इतना तो पता ही, क्योंकि फीमेल इंडिविजुअल अलग होती है, मेल इंडिविजुअल अलग होती है, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप लोग नोटिस करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। आप एक छोटा बेबी पैदा होते हैं लेकिन ग्रो करते करते आप एक मैच्योर इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट आप ग्रो करके एक मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करें। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपके अंदर मिल्क टीथ होते हैं, दूध का दांत होता है आपके मुँह में। बाद में वो सारा दूध का दांत टूट जाता है एक एक करके और आपके अंदर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ये एक प्रोसेस है ग्रोइंग का जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली होता रहता है तब तक जब तक आप एक मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं कर देते। उसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं, पूरा ग्रोथ हो जाता है, तो धीरे धीरे बॉडी जो होती है वो ओल्ड होने के प्रोसेस को भी करती है, जिससे आप मैच्योर इंडिविजुअल बनने के बाद अब बूढ़ा होने के प्रोसेस को देख पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से ग्रोथ के प्रोसेस में एक फेज ऐसा भी आता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ ग्रोथ हो रही है, ना सिर्फ हम बड़े हो रहे हैं, साथ में हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग चेंजेस भी हमें नज़र आती है, हम नोटिस करते हैं, जो हमें टीनेज एज के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो जो टीनेज ईयर्स होते हैं उस वक्त हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ अलग ही प्रकार के चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसके वजह से बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं होती, अलग अलग प्रकार के नए नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ अलग अलग प्रोसेसेस बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी सेम होते हैं, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर ही थिक हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है आर्मपिट एरिया में, आपके बगल वाले एरिया में, और आपके जेनिटल एरिया में जो ग्रोइन वाला एरिया होता है बिटवीन थाइज, वहाँ पर थिक हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये एरियाज डार्क कलर के भी हो सकते हैं। साथ में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर ही आर्म्स पे, हाथों पे और पैरों पे पतले पतले हेयर ग्रोथ भी शुरू हो सकती है, थिन हेयर ग्रोथ भी शुरू हो सकती है। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन होता है। साथ में क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ज़्यादा पसीना आपको आता है, ऑयली आपकी स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं आपकी स्किन पे, पिंपल्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के ये जो प्रोसेसेस हैं इनको देख करके आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर कुछ बड़ा नुकसान नहीं कर रहा है। बेसिकली ये आपको ग्रो कराने का, आप ग्रो हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, यही बस ये सिंबल है। तो अगर थोड़े बहुत पिंपल्स वगैरह हो जाएं तो इससे आप लोगों को फ्रीकआउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल डर नहीं जाना चाहिए। आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं बेशक, लेकिन आपको डरने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जब आप लोग पूरा ग्रो कर चुके होंगे तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगा, पिंपल्स निकलना, ये वो, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी जैसे ही आप पूरा मैच्योरिटी प्राप्त कर चुके होंगे। तो हम देख रहे हैं कि टीनेज ईयर्स के दौरान कुछ चेंजेस जो आते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर वो बॉयज़ और गर्ल्स, फीमेल और मेल्स दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो होते हैं वो अलग होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में अलग होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वो डेवलप करने लगता है, उसका साइज ग्रो करने लगता है, चेस्ट जो है उसके अंदर ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगते हैं और भी चेंजेस देखते हैं। साथ में गर्ल्स जो होती हैं वो मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं, उन्हें मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये केवल गर्ल्स के अंदर होती हैं। दूसरी चेंजेस जो बॉयज़ के अंदर केवल देखने को मिलती हैं, उनमें उनके फेस पर जो नाक के नीचे वाला एरिया, अपर लिप्स वाला जो एरिया है, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि बाद में जाकर मूंछ का जो फॉर्मेशन करे उसके लिए उनके अपर लिप्स पर थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। साथ में गालों पर भी थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बाद में जाके बियर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, दाढ़ी का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ चीक वाले एरियाज पे भी देखने को मिलती है। बॉयज़ की जो वॉइसेस होती है वो क्रैक कर जाती है, वो फटी हुई आवाज़ जैसे लगने लगती है और भारी आवाज़ हो जाती है बॉयज़ की, और गर्ल्स की जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है, पतली आवाज हो जाती है। और क्योंकि धीरे धीरे करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो मच्योर हो रहे हैं, टेस्टिस वगैरह मच्योर हो रहे हैं, इसी वजह से कुछ चेंजेस आपको आपके ग्रोइन एरिया में भी देखने को मिलते हैं, सच एज आपके पेनिस में काफी सारे चेंजेस जो होते हैं वो भी आप लोगों को टीनेज ईयर्स में देखने को मिलते हैं। अब ये सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ये ऐसे अचानक से रात रात में नहीं हो जाते हैं, तो इनको होने के लिए समय लगता है, ये धीरे धीरे करके स्लोली होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपर लिप्स पर बहुत गाढ़ी मूछ आ जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दो चार सिर्फ हेयर ही आए होंगे अपर लिप्स पर, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रोसेस होता है, जैसे हर बच्चा की हाइट सेम नहीं होती है, किसी बच्चे की जो स्किन टोन है वो अलग होती है, तो हर बच्चे के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो इसी तरीके से उनके अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो भी अलग होता है। और इसीलिए आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ बच्चों की जो ग्रोथ हो गई है हेयर की अपर लिप्स एरिया में वो बहुत थिक हो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन कुछ बच्चों की बहुत कम हेयर ग्रोथ हुई होती है अपर लिप्स एरिया में, जो दाढ़ी के बाल आए होते हैं वो बहुत कम आए होते हैं। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है और डिफ्रेंशिएट नहीं करना है एक दूसरे को किसी भी बात पर, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ का प्रोसेस है जो हर एक इंडिविजुअल में हो रहा है। अब बात यह है कि किसी इंडिविजुअल में ये तेजी से हो रहा है, किसी में बहुत जल्दी से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी में आप फाइनली एक मच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे ही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोसेसेस है ये हो क्यों रहे हैं, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन के प्रोसेसेस हैं। आपको एक्चुअली एट द एंड ऑफ दीज प्रोसेसेस मोटिव ये है कि आपको सेक्सुअली मच्योर बनाना है, क्योंकि आप बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, आप ह्यूमन बींग्स तो हैं लेकिन ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होना आवश्यक है, ये एक प्रोसेस है जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति की देन है कि नए फ्लावर्स बनते रहें, उस स्पीशीज के प्लांट्स सर्वाइव करते रहें, तो उसके लिए उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म है प्रकृति की नज़र में, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होना जरूरी है सो दैट वो स्पीशीज सर्वाइव करती रहे, वो पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए। और इसके लिए रिप्रोडक्शन होने के लिए बॉडी के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी जरूरी होती है, और उस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करने के लिए ही ये चेंजेस आप लोगों को टीनेज ईयर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करने के लिए हैं, ताकि आप एंड द एंड ऑफ दीज प्रोसेसेस सेक्सुअली मच्योर हो जाएं और आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं। और क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होता है, तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होने के लिए मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है, और फॉर्मेशन ऐसे ही किसी भी सेल से नहीं हो जाता, केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको ये कहाँ से मिलती हैं, ये जो कुछ अलग टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, और वही पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। अब प्रकृति की नज़र में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोगों को सेक्सुअली मच्योर करना, बॉडी की ग्रोथ कराना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसीलिए जिस वक्त आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला प्रोसेस चल रहा होता है, टीनेज ईयर्स में जो प्यूबर्टी का एज होता है उसके अंदर जो सेक्सुअली मैच्योर करने का जो चेंजेस आपके अंदर बॉडी में आ रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसीलिए जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त सारी एनर्जी इसी में लगाई जाती है, आपको सेक्सुअली मैच्योर करने में लगाई जाती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो उस वक्त आपने देखा है कि आपकी बॉडी बहुत ग्रो करती है, आपकी बॉडी एकदम से एनलार्ज होने लगती है, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है, तो उस वक्त सारी की सारी एनर्जी आपकी ग्रोथ में लग रही होती है। और जब आपको सेक्सुअली मैच्योर करने का टाइम आता है तो सारी की सारी एनर्जी आपको सेक्सुअली मैच्योर करने में जो चेंजेस दिखाने हैं उसमें लगती है। और ये जो टाइम होता है जिस दौरान आप लोग सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं, इसे हम एडोलेसेंस पीरियड या फिर प्यूबर्टी का टाइम कहते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ये आप लोगों को सेक्सुअली मैच्योर करने के लिए हैं, तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एट द एंड इन प्रोसेसेस के एंड में जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि आप मेल गेमीट्स बनाते हैं मेल इंडिविजुअल्स, फीमेल गेमीट्स बनाती हैं फीमेल इंडिविजुअल्स। तो जैसे हमने फ्लावर्स के अंदर देखा था कि मेल गेमीट का ट्रांसफर हुआ था, फ्रॉम स्टेमेन टू पिस्टल, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, मेल इंडिविजुअल से जो मेल गेमीट्स बने हैं उनका ट्रांसफर होगा फ्रॉम द मेल इंडिविजुअल टू द फीमेल इंडिविजुअल, और फीमेल इंडिविजुअल तक ये मेल गेमीट्स पहुंचेंगे और फीमेल गेमीट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे। संपर्क में आने से इनके बीच में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स बनाने हैं, इन दोनों को संपर्क में लाना है ताकि फ्यूजन हो पाए। अब क्योंकि फ्यूजन करवाना है तो यहाँ पर मेल गेमीट्स को पहुंचना होगा फीमेल गेमीट तक। तो फ्लावर्स के तरीके से हमारे में, हम ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता कि हमने मेल गेमीट्स को एयर में ट्रांसफर कर दिया और विद द हेल्प ऑफ विंड्स या फिर वाटर या फिर दूसरे एनिमल्स ये गेमीट्स एक इंडिविजुअल से, मेल इंडिविजुअल से फीमेल इंडिविजुअल तक पहुंचे, ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर जिस तरीके से बाकी एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वैसे ही ह्यूमंस के अंदर भी होता है, और यहाँ पर मेल गेमीट का ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल इंडिविजुअल्स तक होती है। और जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर, अदर एनिमल्स के अंदर मेटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें मेल गेमीट्स जो होते हैं वो एक्चुअली ट्रांसफर करते हैं अपने मेल गेमीट्स को फीमेल इंडिविजुअल्स की बॉडी में, तो इसी तरीके का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे एनिमल्स के अंदर मेटिंग का प्रोसेस होता है, अगर हमें ह्यूमन के अंदर भी मेटिंग का प्रोसेस करवाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पहचान पाएं कि कौन से इंडिविजुअल्स मेल इंडिविजुअल्स हैं और कौन से फीमेल इंडिविजुअल्स हैं। तो इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मेल इंडिविजुअल्स जो दिख रहे हैं वो इस तरीके के दिख रहे हैं, फीमेल इंडिविजुअल्स जो दिख रही हैं वो इस तरीके की दिख रही हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। तो अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी प्यूबर्टी आप लोगों को क्या दिखता है कि फीमेल बिल्कुल दिखने में अलग होती है, मेल्स दिखने में अलग होते हैं, तो इनमें अंतर करने पाने के लिए ही ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है। और साथ में जैसे एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, अपीयरेंस देख करके पता चलता है। तो इसी तरीके से हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनमें भी जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप देखने में अलग लग रहे हैं, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप अलग लग रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है, आप लोगों की तरफ से एक सिग्नल मिल रहा है कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये अब धीरे धीरे सेक्सुअली मैच्योर होने का प्रोसेस अक्वायर कर चुके हैं, ये सेक्सुअली मैच्योर होने के प्रोसेस को प्राप्त कर चुके हैं और अब ये धीरे धीरे करके सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। तो बेसिकली सिग्नल मिलता है दूसरे इंडिविजुअल्स को, तो इस सिग्नल को यूज करके ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बाद में किया जा सकता है। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जो बेबी होता है उसको कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर होती है, फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेबी जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होती है, कोख में यानी कि वूम्ब में होती है। तो वूम्ब में क्या होता है, बेसिकली वहां पर कुछ ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि फ्यूजन हो तो जो बेबी हो वो उनकी बॉडी में ग्रो करे। तो यहाँ पर मेल गेमीट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फीमेल की ओवरीज में होते हैं, और ये जो ओवरीज हैं ये एग रिलीज करती हैं, यानी कि फीमेल जो गेमीट्स है उसको रिलीज करती हैं, और वहाँ पर जब रिलीज किया गया है उसी वक्त क्या होना चाहिए, मेल गेमीट्स जो है उनको पहुँचना चाहिए सेम टाइम पर। जब सेम टाइम पर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट एक ही जगह पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनके बीच में फ्यूजन होगा। अब पहुँचने का काम कैसे होता है, सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, मेटिंग की जाती है मेल और फीमेल के बीच में, और थ्रू पेनिस जो मेल गेमीट से उनका ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स। ट्रांसफर होने के बाद में फ्यूजन हो जाता है मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का। जो फ्यूजन होता है उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो है वो नया बेबी यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है, और ये न्यू इंडिविजुअल जो बेबी है ये मदर के बॉडी में ही रहता है तब तक जब तक वो इतना मैच्योर ना हो जाए कि उसे बॉडी के बाहर निकाला जाए। उसके बाद बॉडी के अंदर बेबी को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फीमेल की होती ही है, साथ में उस बेबी को थोड़ा और मैच्योर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फीमेल की ही होती है, क्योंकि बॉडी जो है, जब बेबी जो है वो पैदा हो जाता है, जब बर्थ हो जाता है उसका, उसके बाद उसको ब्रेस्ट फेड करना पड़ता है, उसे माँ का दूध पिलाना पड़ता है, तो माँ का दूध पिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माँ की ही होती है ताकि वो अपने बेबी का तब तक ध्यान रख पाए जब तक बेबी इस लायक ना हो जाए कि वो अपना ध्यान खुद रख सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फीमेल इंडिविजुअल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट इसीलिए हुई होती है ताकि जब लेटर उनके पास बेबी हो तो वो उसे ब्रेस्ट फीड कर पाए। तो इसी तरीके से हर एक जो चेंजेस आए हैं उनका यूज़ किया जाता है बाद में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के यूज़ के लिए, इन सभी चेंजेस को बनाया जाता है। और साथ ही में हम अब नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है और उनकी कैसे यूज़ की जाती है इन द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस, ये भी देखेंगे। आप लोगों को डायग्राम्स भी दिए गए हैं पेज नंबर 137 पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इनके ऊपर डिस्कशन जो डिटेल में करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर्स से ज़रूर पूछना है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।